बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शिया ही अहले सुन्नत हैं। शिया आडियोज़ की जानिब से इस किताब का चैप्टर नंबर 37, सहाबा शियों की नज़र में, पेज नंबर 363 आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जब हम गैर जानिबदार होकर सहाबा के मौजू पर बहस करते हैं तो मालूम होता है कि शिया इन्हें वही हैसियत देते हैं जो कुरान हदीस और अक़ल देती है। वो सबको काफिर नहीं कहते जैसा कि गाली कहते हैं, और ना ही तमाम सहाबा को आदिल तस्लीम करते हैं जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है। इस सिलसिले में इमाम शरफुद्दीन मूसवी फरमाते हैं, जिसने सहाबा के मुतालिक संजीदगी से हमारे नज़रिए का मुताला किया, वो इस बात को समझ गया कि यही मोतदल रास्ता है, क्योंकि हम इस सिलसिले में ना तो गालियों की तरह तफरीत के शिकार हैं, क्योंकि वो तमाम सहाबा को काफिर कहते हैं, और ना ही जमहूर ब्रैकेट में लिखा है सुन्नियों की तरह अफराद का शिकार हैं जो कि तमाम सहाबा को मोतबर व मौसिक कहते हैं। बेशक कामलिया और गलू में इनका शरीक तमाम सहाबा को काफिर कहता है, और अहले सुन्नत हर इस मुसलमान को आदिल कहते हैं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या इनसे कुछ सुना है। अगरचे सिर्फ सोहबत हमारे नज़दीक बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन सोहबत बग़ैर किसी कैदो शर्त के मासूम अनुल ख़ता नहीं है। इस एतबार से सहाबा भी ऐसे ही हैं जैसे दीगर अफराद, इनमें आदिल भी हैं, सरबर आवर्दा भी हैं और उल्मा भी हैं, चुनाचा इन्हीं में बागी भी हैं, जराइम पेशा भी हैं, मुनाफिकीन भी हैं और जाहिल भी हैं। बस हम इनमें से आदिलों को तस्लीम करते हैं और दुनिया व आखरत में इनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और अली अलैहिस्सलाम से बगावत करने वाले और दीगर जराइम पेशा की जैसे हिंद के बेटे इब्ने ज़रका, इब्ने उकबा और अरताह के ख़िलाफ़ नासलफ़ हैं। बस इनकी कोई इज्जत नहीं है, और इनकी और ना इनकी हदीस का कोई वज़न है, और जिनके हालात मालूम नहीं है इनके सिलसिले में हालात मालूम होने तक तवक्कुफ़ करेंगे। सहाबा के सिलसिले में ये है हमारा नज़रिया, और कुरान और हदीस भी हमारे इस नज़रिए की तायद कर रही है, जैसा कि उसूल फ़िक़ा में मुफसिल तौर पर यह बहस मौजूद है। लेकिन जमहूर ने सहाबा की तकदीस में इतना मुबालगा से काम लिया कि मियाना रवि से निकल गए, और इस सिलसिले में हर ज़ईफ़ व जाली हदीस से इस्तदलाल करने लगे, और इस मुसलमान शख्स की इक़्तिदा करने लगे जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, बिल्कुल अंधी तकलीद। और जिन लोगों ने इस गलू की मुखालफत की, इस पर उन्होंने सबो शितम की बौछाड़ कर दी। वो हमें इस वक्त बहुत बुरा भला कहते हैं जब हम दीनी हकाइक की तहकीक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही आसार की तलाश में वाजिब शरई पर अमल करते हुए मजहूलुल हाल सहाबा की बयान करदा हदीस को रद्द कर देते हैं। इन्हीं बातों की बिना पर वो हमसे बदगुमान हैं, चुनाचा जहालत व नादानी की बिना पर वो हम पर रकीक किस्म की तोहमतें लगाते हैं। अगर वो अक़ल से काम लेते और कवायद इल्म की तरफ रुजू करते तो इन्हें मालूम हो जाता कि सहाबा की अदालत वाले मकूले पर कोई दलील नहीं है। अगर वो ब्रैकेट में लिखा अहले सुन्नत कुरान में गौर व फिक्र करेंगे तो मालूम होगा कि मुनाफिक सहाबा के जिक्र से कुरान भरा पड़ा है। इसके लिए सूरह एहज़ाब व तौबा का मुताला काफ़ी है। जामिया ऐनुश्शम्स इन्वर्टेड कॉमास में है काहिरा के शोबा अरबी अदब के प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हनफी दाऊद कहते हैं, लेकिन शिया सहाबा को भी ऐसा ही समझते हैं जैसे आम अफराद हैं। इन यानी सहाबा के और क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के दरमियान किसी फ़र्क व फजीलत के कायल नहीं हैं। असल में वो यानी शिया सिर्फ अदल को पैमाना समझते हैं, चुनाचा इसी से सहाबा के अफ़ाल को नापते हैं, और इसी तरह सहाबा के बाद आने वालों के अफ़ाल को भी इसी कसौटी पर कसते हैं। और फिर सोहबत कोई फजीलत नहीं है, मगर ये कि कोई इंसान फजीलत का अहल हो और इसके अंदर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरने की तादाद हो। सहाबा में से मासूम भी हैं, जैसे वो अइम्मा हैं जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हुए हैं, मसलन अली अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद। इनमें ऐसे आदिल भी हैं जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अली अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार की। इनमें ऐसे मुज्तहिद भी हैं जो मुसय्यब हैं। इनमें ऐसे भी हैं जिनका इज्तिहाद गलत है। इनमें फासिक भी हैं, जंदीक भी हैं जो कि फासिकों से भी गए गुजरे हैं, और जंदीक ही के दायरे में मुनाफिक और वो लोग दाखिल हैं जो कि सिर्फ ज़ाहरी तौर पर खुदा की इबादत करते हैं, जैसा कि इनमें वो कुफ्फार भी हैं जिन्होंने नफाक के बाद तौबा नहीं की है, और वो भी हैं जो इस्लाम लाने के बाद मुरतद हो गए थे। शिया जो कि अहले क़िबला में से बड़ा ग्रोह है, तमाम मुसलमानों को एक तराजू में तोलते हैं। इस सिलसिले में इनके यहाँ सहाबी ताबईन और मुताखिरीन का इम्तियाज़ नहीं है, और फिर सोहबत इन्हें मासूम नहीं बना सकती है, और ना एतिकादी मसाइल इन्हें कजी से बचा सकते हैं। اور اسی مستحکم بنیاد کی وجہ سے انہوں نے اپنے کے لیے اجتہاد سے صحابہ پر تنقید کرنا اور ان کی عدالت کی تحقیق کو مباح سمجھ لیا ہے، جیسا کہ وہ ان صحابہ پر سب و شتم کرنے کو بھی مباح سمجھتے ہیں جنہوں نے صحبت کے شرائط کو پس پشت ڈال دیا تھا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دیا تھا۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں گے، دیکھو میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ اور اس جیسی دوسری حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھائے اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بنا پر اس حدیث کی مخالفت کی، تو ان مخالفوں کو صحبت سے کیا شرف حاصل ہوا اور انہیں کیسے عدالت سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کی عدالت کی نفی کے سلسلے میں یہ ہے شیعوں کے نظریے کا خلاصہ، در حقیقت یہ وہ علمی اور واقعی اسباب ہیں جن پر شیعوں کے جج کے بنیاد استوار ہیں۔ یہی ڈاکٹر حامد حنفی داؤد دوسری جگہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ صحابہ پر تنقید کرنا اور ان میں عیب نکالنا صرف شیعوں کی بدعت نہیں ہے، کیونکہ زمانہ قدیم میں اس بدعت کے لیے معتزلہ نے بھی اعتقادی مسائل میں وہی چیز بیان کی ہے جو کہ شیعہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کی ہے کہ عام صحابہ پر تنقید کرتے ہیں بلکہ اپنے خلفاء پر بھی تنقید کی، اور جب انہوں نے تنقید کی تھی تو اس وقت ان میں صحابہ کے موافق بھی تھے اور مخالف بھی تھے۔ یہ مسئلہ صحابہ پر تنقید فقط صاحبان علم سے مخصوص ہے، اور اس راستے کو ان شیعہ علماء نے اور ان کے سربراوردہ افراد نے طے کیا ہے جو کہ محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت تھے۔ میں پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ معتزلہ کے علماء کلام اور بزرگ افراد نے پہلی صدی سے ہی علماء شیعہ کی فکر کو اختیار کیا ہے، اس بنا پر صحابہ پر تنقید کرنا شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد ہے، لیکن وہ تشیع کی ایجاد ہے، خود تشیع شیعت نہیں ہے، جیسا کہ شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقائد تبھر علمی سے پہچانے جاتے تھے، اور یہ شہرت اس لیے تھی کہ انہوں نے در اہل بیت علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا، اور یہ وہ معین و اصل مصدر ہے جس سے اسلامی ثقافت صدر اسلام سے آج تک فیض حاصل کر رہی ہے۔ یہ تھا ڈاکٹر حامد داؤد کا نظریہ۔ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ ہر حقیقت کے متلاشی انسان کو نقد و تبصرہ سے کام لینا پڑے گا، ورنہ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے گا، بلکہ بالکل اسی طرح جیسے اہل سنت والجماعت نے صحابہ کی عدالت کے سلسلے میں مبالغہ کی اور ان کے حالات کی تحقیق نہ کی، لہٰذا آج تک حق سے نہ آشنا ہیں۔